جا کر کے بھی حسینوں کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایک شخص صاحب نے دادر سے فرمایا کہ حضرت کچھ انڈونیشین عورتیں وہاں پر طواف کر رہی تھی, تو مطاف پہ دادا بیٹھے ہوئے تھے. تو دادا نے کہا کہ حضرت دیکھیں کتنا پرنور چہرہ ہے ان کا, حضرت یہ دیکھیں ان کا کتنا پرنور چہرہ ہے. تو دادا نے ارشاد فرمایا, فرمایا ظالم تجھے اللہ کے گھر کا نور نظر نہیں آیا, ان کے چہرے کا نور نظر آ رہا ہے. دیکھنا ہے تو اللہ کے گھر کا نور دیکھ. اللہ نے بیت اللہ دیکھنے کے لیے بلایا ہے, لوگوں کا نور دیکھنے کے لیے نہیں بلایا. تو شیطان عجیب عجیب طریقوں سے وار کرتا ہے. انسان وہاں جاتا ہے پھر بھی بد نظری نہیں چھوٹتی, کیونکہ عالمی حسن جمع ہے. پوری دنیا سے عورتیں, مسلمان مرد مسلمان عورتیں جمع ہیں, وہاں جا کر کے بھی بد نظری کر رہا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کی ایک آنکھ نہیں تھی, طواف کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آنکھ کیسے ضائع ہو گئی؟ کہا طواف کرتے وقت ایک نظر بد پڑ گئی تھی, ایک بری نظر کسی عورت پر پڑ گئی, غیب سے ایک تھپڑ آیا اور آنکھ پر لگا اور آنکھ کی بینائی چلی گئی, اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ پہلی نظر تھی, اس پر معافی ہے, دوسری نظر ڈالے گا تو اس پر معافی نہیں. تو اتنی رقم خرچ کر کے جا رہا ہے, جہاز یہاں سے تیاری کر کے نکلتا ہے, جہاز میں بیٹھ کر ہوسٹس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مولانا وقت ہی نہیں گزرتا, حج کر کے واپس آ رہا ہے, عبادت کر کے واپس آ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نہ لڑا من حج للہ فلم یفت, گناہ نہیں کیا, ولم یفسق, اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی, لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا. کیونکہ لڑائی جھگڑا عموماً ہو جاتا ہے, کس لیے؟ جب اتنے سارے لوگ ہیں, بدگمانیاں شیطان پیدا کر دیتا ہے. جب میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا, ایک ہی حج کیا فرض حج, اللہ تعالیٰ نے وہ کروا دیا. تو حضرت مفتی عبد الروف تکروی صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ کیا. ہم نے کہا حضرت ہمارا گروپ جا رہا ہے حج کے لیے, اور ان کا اجتماعی کھانا ہے, کھانا سارا گروپ مل کر کے کھائے گا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, حج میں تو شریک رہنا سب کے ساتھ, لیکن کھانے اور پینے میں شریک مت رہنا, اپنا خود انتظام کرنا. ٹھیک ہے حضرت, اب سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اپنا کس طرح سے کریں گے, کیونکہ وہاں تو پک بھی رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا, یہاں پکائے گا کون اور کھلائے گا کون. خیر لاتے رہے بازار سے, خرید کر کے لے آتے تھے, کھا لیتے تھے, اور ان کو دیکھتے تھے تو وہاں ایک آلہ کھانا پکڑا ہوتا تھا. تو ہم نے سوچا دل کے اندر کہ یار ہم بھی شریک ہوتے, حضرت نے پتہ نہیں کیوں مشورہ دیا. جب واپس ہم پہنچے کراچی آنے کے لیے ایئرپورٹ پر, تو وہاں ہر شخص ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا. کس بات پر؟ کہا کہ بھائی روزانہ کے 20 ریال سب جمع کراتے تھے, اب وہ دیکھو فلاں دن جو ہے تربوز آیا تھا وہ سارا تو ایک آدمی کھا کیا, تو ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے, کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے. اسی لیے جو حج کر چکا ہو, حج کے مسائل بتانا الگ بات ہے, اور جو حج کر چکا ہو اس سے مسائل کا معلوم کرنا یہ الگ بات ہے. ایک سب نے حج کیا ہوا ہے, اس سے مسئلہ معلوم کرنا حج کا وہ الگ بات ہے, اور ایک سب کتاب دیکھ کر کے بتا رہا ہے وہ الگ بات ہے. کیونکہ جو مبتلا بھی ہوتا ہے اس کی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اب ایک شخص ہے وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے, کسی مصیبت میں آفت میں آ گیا, کسی پریشانی میں بیماری کے اندر آ گیا, مثلا گردہ خراب ہو گیا, اب دوسرے شخص سے کہا جائے کہ تو اس کا درد بیان کر, وہ بیان نہیں کر سکے گا. کر سکے گا؟ ایک شخص بیمار ہو گیا, گردے فیل ہو گئے, یا کوئی اور بیماری آ گئی اس کو, کینسر ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, کوئی اور بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا, اب ایک دوست کو لے کر کے آیا کہ تو جو ہے اس کا درد بیان کر دے, وہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن جو مبتلا بھی ہے, جس کا گردہ فیل ہوا ہے, اس سے کہ اپنا درد بیان کر, تو وہ جس درد سے بیان کرے گا ایسا کوئی نہیں بیان کر سکتا. اسی کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا, جب نہیں کچھ کیف و مستی تو پھر گنگناؤں کیا. نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو پھر درد دل دکھاؤ کیا, اور جب نہیں کچھ کیف و مستی تو پھر گنگناؤں کیا. فرماتے ہیں مستی دل کے اندر ہوتی, तो मुब्तला भी शख्स जिसने कर लिया वो जिस तरीके से आलिम आ जाए, अल्लाह ताला ने हमें हमारे उस्ताद का साथ अता फरमाया था, वो भी साथ थे, तो हमें अल्लाह ताला ने एक आलिम का साथ अता फरमाया, फिर वो हमारे उस्ताद ने कई हज भी किए गए थे, तो इतनी आसानी से हज करवाया कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि उस्ताद सबसे बड़ी आग लगी थी, उसके बाद से फिर आग नहीं लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी आसानी का मामला फरमाया कि कोई तकलीफ नहीं हुई। जितनी लोगों को तकलीफ हुई, कितनी अमवात हुई, कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी से करवाया। इसलिए कि कुछ मशवरा मुख्तलिफ लोगों साथ से किया, कुछ दादा से किया, कुछ दादा ने हिदायत की, लोग जल्दबाजी करते हैं। जब वहां पहुंच गए, शुरू से शुरू करता हूँ बात को कि एक इंसान हज का इरादा करता है तो सबसे पहले एहराम खरीदता है, तो एहराम खरीद ले और जरूरत की चीजें खरीद ले, जो जरूरियात की चीजें वो ले ले, लेकिन इतनी नहीं कि सामान ज्यादा हो जाए, हर चीज वहां पर मिलती है, अगर जाकर वहां खरीद सकता है तो वहां खरीद ले, अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो यहाँ से लेकर के चला जाए, सामान जमा कर लिया, उसके बाद जिस दिन जाना हो तो पहले गुस्ल करें, गुस्ल के बाद जितने फालतू बाल वगैरह है सब साफ कर ले, नाखून काट ले, उसके बाद एहराम बांध ले, एहराम बांधने के बाद दो रकात नमाज पढ़ ले, और नमाज के बाद फिर दुआ कर ले, नियत ना करे, नमाज पढ़ ले, नमाज के बाद क्या करे, दुआ कर ले कि अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ और इस हज को मेरे लिए आसान फरमा, क्योंकि हदीस पाक के अंदर यह दुआ सिखलाई गई कि اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسر لي وتقبله مني, कि अल्लाह मैंने हज और उमरे का इरादा किया है, इसको मेरे लिए आसान फरमा। तो दादा ने इरशाद फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फयस्सर हो ही की जो कैद लगाई है कि अल्लाह इसको आसान फरमा, मालूम हुआ कुछ मुश्किलात जरूर आएंगी, कुछ मुश्किलात जरूर आएंगी, लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हालांकि उस जमाने में क्या मुश्किल थी, उस जमाने में तो मुसलमानों की तादाद भी कलील थी, चंद लोग हज करने वाले उमरा करने वाले थे, लेकिन उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह दुआ सिखलाई कि बाद में आने वाली उम्मत के लिए यह दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला उनके हज और उमरे के इरादे में आसानी पैदा फरमाए, क्योंकि अगर आज 10 है तो जब 1400 साल के बाद ये 10 लाख का मजमा हो गया। तो उस हिसाब से जो है अपना सामान जमा कर ले, नाखून वगैरह काट ले, जो जरूरत की चीजें वो साथ ले ले, फिर जब जहाज बाज लोग क्या करते हैं जल्दी नियत कर लेते, जैसे ही घर से निकले एयरपोर्ट पर पहुंचे नियत कर ले, अब जब नियत कर ली अब एहराम नहीं खोल सकता, जब नियत कर ली अब एहराम नहीं खोल सकता, लिहाजा नियत जब करे जब जहाज उड़ जाए। बाद दफा ऐसा हुआ जहाज लेट हो गया, एक एक दिन लेट हो गया, अब क्या है जिसने नियत कर ली अब वो हालत एहराम के अंदर नियत करते ही अब हालत एहराम के अंदर आ गया, और हालत एहराम के अंदर खुशबू का इस्तेमाल करना ममनू, नाखून काटना ममनू, बाल टूटेगा तो दम सबका देना पड़ेगा, बाल टूट गया तो सबका देना पड़ेगा, सर ढाप कर नहीं सो सकता, अल्लाह ताला अपने घर बुला रहे। अगर हम किसी दुनियावी इंसान के घर मेहमान जाते हैं तो इंसान कितना तैयार होकर के जाता है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन करके जाता है, अच्छी से अच्छी इत्र लगा के जाता है, अच्छी से अच्छी खुशबू लगा करके जाता है, लेकिन उस रब्बुल इज्जत ने बुलाया फरमाया ना इत्र लगा सकते हो न खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जो कपड़े हैं ये उतारो मेरे घर आ रहे हो, एक चादर ऊपर और एक चादर नीचे बस काफी है, और चप्पल जो पहनोगे पाँव के अंदर वो कोई हजारों और लाखों वाली नहीं, दो पट्टे वाली जिसके अंदर ये हड्डी खुली हो, ये जो हड्डी है ये खुली होना लाजिम है। अब इंसान सोचे यार मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे इस तरीके से बुला रहे हैं, तो दादा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसलिए इस तरीके से बुलाया कि तुम आज मेरे घर इस तरीके से आ रहे हो, जब दुनिया से भी आओगे मेरे पास तो भी इसी हालत में आओगे, फिर तो इससे ज्यादा हालत होगी। भाई क्या है, कफन ही होता है इंसान के पास, ना पैरों में चप्पल, ना आंखों पे चश्मा, ना सर पे टोपी, कुछ भी नहीं, लपेट करके ले जाकर के मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम घर जाओ, अब इसका और मेरा मामला है। इसीलिए मुसलमान औरतों को चाहिए कि मर्दों के लिए कफन कितने, दो कफन है भाई, एक दो कफन है, औरतों के लिए एक कैसे होगा, औरतों के लिए तो ज्यादा होगा, तीन है, एक सीना बंद भी है कि औरत का जब कफन बांधा जाएगा एक नीचे और एक ऊपर, फिर एक सीने पर लपेटा जाएगा। तो जो जो औरत अल्लाह के पास जा रही है, जिसने उसको पैदा किया, वो रब तो उस औरत से इतनी हया कर रहा है कि सीना के ऊपर एक कपड़ा इजाफी लपेट कर बुलवा रहा है, पर आज मुसलमान औरत बेपर्दा बाजार में घूम रही है, उसको हया नहीं। आज कहते हैं मौलाना चेहरे का पर्दा थोड़ी है इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर चेहरे का पर्दा नहीं है, नहीं, इस्लाम के अंदर चेहरे का ही पर्दा है, क्योंकि दादा ने फरमाया कि जो इंसान गुनाह में मुब्तला होता है वो चेहरे से ही शुरू होता है। आजकल तो बुरके ऐसे आ गए, बुरके ऐसे आ गए कि जिनका जिनको मजाजी की बीमारी है वो देख करके अंदाजा लगा लेते हैं, इमारत देखकर अंदाजा लगा लेते हैं अंदर क्या क्या होगा, इमारत देख करके। लिहाजा ऐसे औरतें आजकल खुशबू लगाकर बाजारों में घूम रही है, जबकि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की रिवायत है, कि एक औरत अगर खुशबू लगा करके निकले और उसकी नीयत क्या हो कि लोगों तक मेरी खुशबू पहुंचे, तो फरमाया अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू उसके ऊपर हराम फरमा देते, जबकि जन्नत की खुशबू 70,000 मील दूर से आती है, अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी उसके ऊपर हराम कर देते। लिहाजा औरतों का ऐसे निकलना कि बन संवर करके खुशबू लगा करके निकलना, ऐसी जगहों पर जाना जहां पर गैर महरम और गैर मर्द मौजूद हो, उसके लिए हराम है ये। तो अल्लाह ताला जब हज के लिए बुलाते हैं तो क्या है, दो चादरें, टोपी फरमा उतार दो, पगड़ी फरमा उतार दो, मेरे घर आ रहे हैं तुम, मेरे मेहमान हो। जो अल्लाह का मेहमान होता है, मेहमान की मर्जी के मुताबिक मेजबान जाता है। एक काफिला जा रहा था, हजरत की उम्मत में वाक्य लिखा है कि काफिला जा रहा था हज के लिए, उसमें एक नौजवान भी था, तो काफिले वाले ने देखा कि नौजवान के पास खुद साजो सामान नहीं और सारा दिन सफर करता और सारी रात इबादत करता। कुछ दिनों के बाद काफिले वालों ने पूछा, जैसे आजकल जहाजों के अंदर पूछते हैं, एक दो घंटा तो अजनबियत होती है, दो घंटे के बाद फिर लोग खुल मिल जाते हैं, भाई आप कहाँ से, मैं फला जगह से हूँ, क्या करते हैं, फला कारोबार करता हूँ। अब तो 4 घंटे का सफर हो गया, उस जमाने में महीनों का सफर था, तो उनसियत होने में टाइम लगता था, वक्त लग जाता था। जब उनसियत हुई तो पूछा कि साहबजादे आपके पास सामान नहीं है, दादेरा कुछ भी नहीं है, तो उस नौजवान ने क्या जवाब दिया, उसने कहा जब आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो खाना साथ लेके जाते हैं। उसने क्या इश्तिया जवाब दिया, उसने कहा कि आप जब किसी के घर मेहमान बन जाते हैं तो क्या अपना खाना साथ लेके जाते हैं। मैं वो चुप हो गया, वो समझ गया कि ये इसको अल्लाह ताला ने जवानी के अंदर जिसको अल्लाह ताला अपना इश्क और मोहब्बत अता फरमा दे, तो बड़े बड़े आलिम उसके सामने समझ जाते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जमाने में एक बच्चा था, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, बारिश हुई थी, कीचड़ थी, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से कहा कि बेटा संभल कर कहीं फिसल मत जाना। तो उसने कहा कि इमाम साहब अगर मैं फिसला तो अकेला फिसलूंगा, लेकिन अगर आप फिसल गए तो उम्मत पूरी फिसल जाएगी। इमाम साहब रोने लगे, फिर घर लाए, उस बच्चे की तवाजो की, उसको खिलाया, टॉफी दी, फिर उसको रुखसत किया और फरमाया कि ये देखो अल्लाह ताला जिसको दीन की फरासत आता फरमाता है तो उसकी नजर कहाँ तक होती है। कि इमाम साहब ने फरमाया कि बच्चे समझ जाना, कहीं तो ये चोट ना लग जाए, फिसल जाएगा। तो उसने क्या कहा, इमाम साहब अगर आप फिसल गए तो उम्मत फिसल जाएगी। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारत के लिए गए और ज्यारत की, ज्यारत के बाद फिर ये इत्तला मिली कि अहले इल्म, क्योंकि इमाम शाफई मक्के के रहने वाले थे, तो ये इत्तला मिली कि कूफा के इराक के अंदर इमाम मोहम्मद और इमाम अहमद रहमतुल्लाह दो अइमा वहां भी है। तो 10 साल खिदमत की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की, 10 साल खिदमत के बाद फरमाया हजरत अगर इजाजत हो तो मुझे इत्तला मिली है जो लोग हज के लिए आते हैं कि इराक के अंदर भी दो अइमा पाए जाते हैं, मैं उनकी खिदमत करके उनके पास जाकर के उनसे भी कुछ दीन सीखना चाहता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इजाजत दे दी, चले गए, जाकर खिदमत करते रहे करते रहे, बरसा बरस रहे। फिर जब वापस आए, लोगों से मालूम किया कि इमाम मालिक कहाँ है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आकर के बैठ गए। कुछ देर के बाद देखा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो आ रहे हैं, जब पहली दफा आए थे तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हालत गुर्बत की हालत थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, एक वक्त खा लिया, दो वक्त फाका कर लिया। अब जब कुछ 10 साल के अरसे के बाद देखा तो ये हालत थी कि सैकड़ों का मजमा पीछे था और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक यमनी जुब्बा पहना हुआ था जिसको पीछे से 4 आदमी उठा करके चल रहे। खैर उन्होंने देखा, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने देख कर चुप होकर के बैठ गए। आकर के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी के ऊपर बैठे और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनाना शुरू कर दी। अहादीस सुनाने के बाद सिलसिला शुरू हुआ किसका, सवाल और जवाब का, कि क्या चीज शरीयत में हलाल है और क्या हराम है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं छुप करके बैठा था कि नजर में ना आ जाओ, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पहचानते थे। सवाल किया गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पर्चा आया, पर्चा देखा, फरमाया भाई जितने यहाँ पर बैठे हैं पुराने वो जवाब दे। किसी ने जवाब नहीं दिया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से क्या किया कि बराबर वाले की कान में जवाब बता दिया, कहा उसकी जवाब बता दो। उसने, वो बेचारा जाहिल था, उसको इल्म दीन पढ़ा नहीं था, उसने जवाब दे दिया। उसने मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब जिसको ना मालूम हो और इस तरह उसको इल्म मिलने लगे तो वो तो खुल जाता है। हाँ यार, मुझे मेरा जवाब सही हो गया जबकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बाद दूसरा सवाल आया, दूसरे सवाल का जवाब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उसके कान में बतला दिया। उसने फिर कहा हजरत मुझे पता है, फिर खड़ा हुआ, फिर जवाब दे दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब तीसरा सवाल आया तो फिर उसने इमाम शाफी की तरफ देखा, इसका भी जवाब दे दे मुझे ताकि मदीने में मेरी इज्जत बन जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने उसका भी जवाब बता दिया। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी दफा देखा कि एक ही शख्स खड़ा हो रहा है और वो जवाब दे रहा है, तो उसको बुलाया, फरमाया इधर आओ। फरमाया तुम मेरी मजलिस में आने वाले तो नहीं लगते, अजनबी हो, ये जवाब कहाँ से दिए। फरमाया हजरत मैंने कहा दिए, वो मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, वो बता रहा था, मैं जवाब दे रहा था। फरमाया भाई खड़े हो जाओ। जब खड़े होकर के देखा तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो उसी वक्त बुलाया, बुलाकर सीने से लगाया और अपने पास बिठाया और फरमाया आप जिसको सवाल पूछना है इनसे पूछ ले, शागिर्दों की यह इज्जत। फिर उसके बाद जब निकलने लगे तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रोने लगा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हालत देखकर। तो अल्लाह ताला जिसको फरासत अता फरमाते हैं उसकी नजर कहाँ तक जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया तू यही सोच रहा है कि 10 साल पहले जब तू मुझसे जुदा हुआ था तो मैं गुर्बत के अंदर था और आज जब तू आया है तो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत अता फरमाई, दौलत अता फरमाई। कहीं मैंने अपनी दौलत दीन का सौदा दुनिया के बदले में तो नहीं कर लिया, इसीलिए रो रहे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हजरत मेरे दिल के अंदर देखकर यही ख्याल आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दीन को दुनिया के बदले में बेच दिया हो। ये किस जमाने की बात है, खैरों करोड़ की बात है और दोनों आइंदा है। तो फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस मस्जिद के अंदर जितना हदिया आता है, जितना हदिया आता है मेरे लिए, मैं कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेता हूँ और कुछ हिस्सा गरीबों के अंदर तकसीम कर देता हूँ। और फिर लिखा है रिवायत के अंदर कि जिस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा रहे मदीने में, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की जब जाने लगे, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे पास जितना खजाना है जा मैंने तुझे दिया। फरमाया, हजरत आप कैसे गुजारा करेंगे, आप तो उस्ताद है मेरे। फरमाया कि बेटा मेरे पास फिर आ जाएगा। लिहाजा 100 खच्चर उस जमाने में 100 खच्चर सामान के भर करके दिए। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं मक्के में दाखिल हुआ तो निकला था तो 2 कपड़ों के अंदर निकला था, अब दाखिल हो रहा हूँ तो 100 खच्चर सामान के से लेकर के दाखिल हो रहा हूँ। फरमाया कि अहले मक्का जो मेरे खानदान की औरतें थी जिनसे पर्दा नहीं था, वो भी मक्के से बाहर आकर इस्तकबाल के लिए खड़ी थी कि ये कितनी इतना इल्म हासिल करके आ रहा है। और मैं जैसे ही मेरी वालदा ने देखा कि 100 खच्चर सामान और इतना उम्दा लिबास पहन करके आया हूँ, तो वालदा ने मक्के से बाहर रोक दिया। फरमाया कि नहीं, मक्के में दाखिल नहीं हो सकता, तू जिस हालत में निकला था उसी हालत में दाखिल होगा, लिहाजा ये जितना सामान है ये सब गुरबा में तकसीम कर दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुबह में मक्के में दाखिल हुआ था, शाम तक अपना माल तकसीम करता रहा, यहाँ आ तक के फिर उसी हालत में आया। फिर मेरी माँ ने मेरी पेशानी पर गोसा दिया और कहा कि अब तुझे मक्के में आने की इजाजत। आज माल को फखर समझा जाता है, उस जमाने में माल को वबाल समझा जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि माल आने से मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए, मैं अपने आप को मुस्तग़नी समझने लगूं। आज लोग दुआ कराते हैं कि हजरत इतनी मुश्किलात है, इतना ये मामला पेश आ गया। एक बुजुर्ग का वाकया मैं पढ़ रहा था कि उनके घर में फाका था, यहाँ तक कि इतना फाका कि बच्चे जो दूध पीते बच्चे थे वो भी भूख से रो रहे थे। तो खादिमा जो घर में थी उसने क्या किया कि बच्चा जब रोने लगा भूख से तो चुप कराने की खातिर वो लेकर महल्ले में निकल गई। वो बुजुर्ग हंसी थे, जब एक मुरीद ने देखा कि बच्चा भूख से रो रहा है तो भागा घर और एक तस्तरी के अंदर खाने पीने का सामान भर करके ले आया और कहा कि हजरत ये आपके लिए हदिया है। फरमाया तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा हजरत वो खादिमा निकली थी, उसकी गोद में बच्चा का दूध पीता और वो रो रहा था, उसी वक्त खादिमा को बुलाया। फरमाया अच्छा आपका हदिया कबूल है, जाइए। खादिमा को बुलाया, फरमाया जो नेमत अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई वो नेमत मेरे घर में आई थी और वो तेरी वजह से चली गई, लिहाजा तू निकल जा मेरे घर। उस वक्त फक्र और फाके को नेमत समझा जाता था, आज दौलत को नेमत समझा जाता है। फकीर आ जाए, हदीस पाक के अंदर आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तुम में से बाजे लोग ऐसे हैं कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, सर में डालने के लिए तेल नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर वो अल्लाह ताला से सारी जन्नत का सवाल करे तो अल्लाह ताला उनके सवाल को रद्द नहीं फरमाएगा। और ये भी फरमाया साथ में कि अगर वो तुम्हारे दस्तरखान पर आए तो तुम उनको अपने दस्तरखान पर बिठाना गवारा नहीं करोगे कि ये तो इतना गरीब आदमी है, इसको कौन अपने दस्तरखान पर बिठाएगा। और फिर अल्लाह की कसम खा करके फरमाया कि अगर वो अल्लाह ताला से पूरी जन्नत की का सवाल कर ले कि अल्लाह सारी जन्नत हमें आता फरमा दे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कभी उनके सवाल को रद्द नहीं फरमाएंगे। तो दोस्तों मुश्किल तो आती है, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ سب سے پہلی چیز تمہارے اوپر دشمن کا خوف ساری کر دیں گے. خوف سے مراد خوف العدو ہے, دشمن کا خوف ہوگا کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں سے ہم پر حملہ کر دے. اللہ نے فرمایا اس چیز میں تمہیں ضرور بے ضرور آزماؤں گا. اب جو اس کے اندر صابر رہتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کا خوف ہٹا کر پھر اس کے دشمن کے اوپر اس کا خوف طاری کر دیتے. چلو فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احد کے اندر 313 تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب ان کفار کے دلوں پر ڈال دیا. کس وجہ سے؟ بما اشرکوا باللہ, کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کا رعب ان کے دلوں کے اوپر ڈال دیا. تو پہلی چیز جس میں آزمایا جائے گا وہ خوف ہے. دوسری چیز جس میں انسان آزمایا جائے گا وہ جو بھوک میں, کھانے کے لیے نہیں ہوگا, انسان بھوکا ہوگا پھر سوچے گا یا اللہ یہ بھوک کیوں بھیجی. تو معلومہ قرآن کے اندر جو چیز نازل ہو گئی دوستو ایک دین کا معاملہ ہے. ایک چیز کا حکم اللہ نے دے دیا کہ میں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا, تو انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. یا اللہ تو نے کھلا دیا تیرا احسان ہے, یا اللہ تو نے نہیں کھلایا, یا اللہ تو مالک ہے میرا, تو مالک ہے میرا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ غلام خرید کے لائے. پوچھا غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, مالک جس نام سے پکار لے وہی نام ہے. بھائی گاڑی سے کیا چیز لے کھلا. تو فرمایا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا. فرمایا اچھا کھائے گا کیا؟ کہا حضور غلاموں کا کھانا بھی کوئی نہیں ہوتا, جو مالک کھلا دے وہی کھا لیتا ہے. کہا اچھا نام تو بتا دے. کہا نام بھی کچھ نہیں ہوتا, جس نام سے مالک پکار لے وہی نام ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو اس نے کہا حضرت مجھ سے کیا غلطی اور خطا ہوئی؟ فرمایا تو نے مجھے میرے رب کی عبدیت سکھا دی. تو نے مجھے میرے رب کی عبدیت سکھا دی. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ہم تو اس طریقے سے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے رکھے کہ ہم پر فخر فاقہ نہ ہے, مال کی فراوانی ہو, ہماری تجارت کے اندر اتنی برکت ہو کہ ہمارے پاس لوٹ گننے کا وقت نہ ہو. اور جس کو دیکھتا ہے لوٹ گنتے وقت, اگر شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کی حکایت مشہور ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال فرمایا ہے اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لیں گے. جو حلال عطا فرمایا ہے تمہیں اس کا حساب لیا جائے گا, اور اگر حرام کرو گے تو اس پر عذاب دیا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ تم ایک انسان جاتا ہے بازار میں, کماتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, محنت مزدوری کر کر آتا ہے, گھر کے اندر خرچہ لے کر کے آتا ہے, اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, تو فرمایا اس کا حساب دیا جائے گا قیامت کے. کہ تجھے قوت کس نے دی تھی کہ تم نے کمایا؟ حلال و حرام کے اندر تمیز کی تھی تو نے یا نہیں کی تھی؟ فرمایا اس کا تو حساب لیا جائے گا. اور فرمایا جو حرام کما کر کے لیا رہے گا تو اس کا حساب و کتاب نہیں, اس پر عذاب دیا جائے گا. تو فرمایا کہ میں کیوں ایسی دنیا کے پیچھے بھاگوں جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. جس کے دنیا کے پیچھے بھاگنا, دنیا کی مثال کتے کی ہے. بزرگان دین میں دنیا کی مثال کس سے دی ہے؟ کتے کی مثال ہے. کتے کی مثال کیا ہے؟ آپ پتھر لے کر کے بھاگنا شروع ہو, بھاگنا شروع ہو اس کے پیچھے, تو آپ سے آگے آگے بھاگے گا. اور اگر اس نے ایک دفعہ بھونکا اور آپ ڈر گئے, تو ڈر کر کے آپ سے بھاگیں گے, تو اب کتا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. تو اللہ والوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم دنیا کو چھوڑ کر کے بھاگو, یہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. اسی لیے اللہ والے دنیا کی طرف نہیں بھاگتے, دنیا اس کی طرف بھاگتی ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں, ارے یار مولانا لوگوں کی تو کیا مزے ہیں, دیکھو کوئی جوتی اٹھا رہا ہے, کوئی پانی لا رہا ہے, کوئی گاڑی پیش کر رہا ہے, کوئی پاؤں دبا رہا ہے. تو اللہ والوں کے مزے حضرت حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ, ماشاء اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ, میرے مرشد اول حضرت تشریف لائے, تو ایک صاحب एक बाहर मुल्क के सफीर थे, वो अपनी गाड़ी लेकर के आए, तो लोग देखने लगे कि हजरत के लिए सफीर की गाड़ी और करोड़ों की गाड़ी। तो फिर हजरत ने बयान में फरमाया अल्लाह वालों का बुढ़ापा मत देखो, उनकी जवानी देखो। फरमाया अगर बुढ़ापा देखोगे तो गुमराह हो जाओगे, और जवानी देखोगे, क्योंकि फरमाया जवानी में इंसान मेहनत करता है, बुढ़ापे में तो पेंशन मिल रही होती है। फरमाया बुढ़ापे के अंदर लोग क्या देखते हैं, यार इनके पीछे तो इतने लोग चल रहे हैं, इतने चप्पल उठाने वाले, इतने हाथ चूमने वाले, इतने गोसा देने वाले, इतने खाना खिलाने वाले। तो फरमाया कि ये क्या है, फरमाया ये जवानी की पेंशन मिल रही है, ये जवानी की पेंशन है, तो जवानी के अंदर मेहनत की उन्होंने। तो अल्लाह ताला बुढ़ापे के अंदर क्या करता है, दुनिया की हुकूमत भी 60 साल के बाद क्या करती है, रिटायर करने के बाद कहती है भाई इतनी पेंशन आपकी है। अब एक इंसान सोचे कि यार इसको तो घर बैठे 5,000 रुपए पेंशन मिल रही है, तो क्या है जवानी में जो उसने मेहनत मजदूरी की वो पेंशन उसको दुनिया में मिलने लगी। तो जिसने जवानी अल्लाह के दीन के ऊपर फिदा की, हजरत जवानी के अंदर जिन लोगों ने हजरत की जवानी देखी, मैंने तो सिर्फ सुना कि हजरत सुबह निकलते थे घर से खाना लेकर के एक बस्ती के अंदर जाते, वहां के लोगों को जमा करते, दीन की खिदमत जिस तरह से वहां के लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद कुरान के आदाब बयान फरमाई, कुरान की अहमियत बयान फरमाई कि कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा। आज क्या है, कुरान वसीला मुअज्जा समझा जाता है, घर में कुरान औताक में रखा हुआ है, कब्र में मुर्दा उतार रहे हैं तो कहते हैं कुरान के साए के अंदर उतारो। अगर जिसने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा नहीं समझा नहीं, तो खाली कुरान के अल्फाज और कुरान के किताब क्या उसको फायदा देगी। एक शख्स सारी जिंदगी कुरान के मुखालिफ चलता रहा, अब मरने के बाद उसके सर के साथ साथ कुरान लेकर के चल रहे, तो कुरान का साया नजात नहीं दिलाएगा, कुरान पर अमल नजात दिलाएगा। अगर अमल करोगे तो फिर कुरान का साया न भी हो तो भी नजात होगी, और अगर अमल नहीं किया तो कुरान का साया भी कर दिया जाए तो भी नजात नहीं होगी। अल्लाह ने कुरान साए के लिए नाजिल नहीं फरमाया, अमल के लिए नाजिल फरमाया कि ये कुरान भेज रहा हूँ हिदायत बनाकर, हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो किताब है ला रैब फी जिसके अंदर एक जर्रा बराबर शक नहीं है। आगे क्या फरमाया, हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुस्लिमीन के लफ्ज़ क्यों नाज़िल नहीं फरमाया कि हुदन लिल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के लिए हिदायत की चीज है, मुत्तकीन का लफ्ज़ क्यों फरमाया। भाई ख्याल पैदा होता है कि कुरान तो सारे आलम के लिए आया है, सारे इंसानियत के लिए आया है, मुसलमानों के लिए आया है, तो अल्लाह ताला को यहाँ क्या नाज़िल फरमाना चाहिए था, हुदन लिल मुस्लिमीन कि ये हिदायत है मुसलमानों के लिए। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हुदन लिल मुत्तकीन कि ये हिदायत किसको देगी, जो तक्वा से रहेगा, मुत्तकी बनकर के रहेगा। मालूम हुआ कि मुसलमान होना और है मुत्तकी होना और है, और ये किताब सिर्फ फायदा उसी को देगी जो डर के अल्लाह के खौफ से इस किताब को थाम ले और उसके ऊपर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको जरूर से जरूर हिदायत अदा करवाएंगे। और आज हम इस जमाने के अंदर अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं कि मुसलमान है कुरान पढ़ना नहीं आता, और फिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, फखर महसूस करते हैं अंग्रेजी बोलते हुए। जब कब्र के अंदर उतरेगा तेरा जनाजा तो हिसाब और किताब अंग्रेजी के अंदर नहीं होगा, अरबी के अंदर होगा। हिसाब और किताब अंग्रेजी के अंदर नहीं लिया जाएगा, अरबी के अंदर लिया जाएगा। उस वक्त पूछा जाएगा मन रब, तेरा रब कौन है, मा दीन, तेरा दीन क्या है। अगर दीन पर अमल किया होगा तो दीन का जवाब दे पाएगा, अगर दीन पर अमल नहीं किया जाएगा तो जवाब ही नहीं देगा। और फिर पूछा जाएगा मन हाजर रजुल, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी दिखलाई जाएगी और पूछा जाएगा मन हाजर रजुल, ये शख्स कौन है। अगर सुन्नतों पर अमल किया होगा तो फिर पहचान लेगा, वरना कहेगा मैं आदमी हूँ, जानता ही नहीं ये शख्स कौन है। तो बात चली थी हज से, बात कहीं से कहीं चली गई कि जब हज का इरादा कर लिया, जहाज में बैठ गया, बैठने के बाद सबसे पहला इरादा क्या करे कि अल्लाह, में पहली दुआ दो रकात पढ़ने के बाद ये मांगे कि अल्लाह मैं जिस मकाम पर जा रहा हूँ वो तेरा घर है, मुझे इस मकान का अदब आता फरमा और इस मकान की मोहब्बत आता फरमा और वहां के लोगों का अदब आता फरमा और वहां के लोगों की मोहब्बत आता फरमा, और पांचवी दुआ कि अल्लाह मुझे वहां बदनजरी और हरामकारी से बचने की तौफीक अदा फरमा, बदनजरी और हरामकारी से बचने की तौफीक अदा फरमा। एक साहब ने राजा से आज किया कि हजरत बहुत अच्छा हो गया, मेरा बुलावा नहीं आया वहां से, दुआ कर दीजिए बुलावा आ जाए। फरमाया बुलावा बुलावा नहीं होता, इंसान की अपनी हिम्मत होती है। आज लोगों पर हज फर्ज है, कहते अरे 20 साल टाइम नहीं, अगले साल कर लेंगे, अगले साल जिंदा रहेगा तो करेगा, अगले साल जिंदा रहेगा तो करेगा। हदीस पाक के अंदर क्या आता है, जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया और उसने हज नहीं किया, हालांकि उसके पास क्या था, माल भी था, रास्ता भी पूरा अमन था, फिर भी उसने हज नहीं किया, तो हदीस के अल्फाज है कि इंशा यहूदी हो इंशा नसरानी, तो उसको चाहिए कि चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर के मरे। आज लोग इसके अंदर सख्त तरीन सुस्ती किए हुए कि हज फर्ज हो जाता है, कहते हैं नहीं अभी इतना है कि मैं मेरे ऊपर फर्ज हुआ है, अभी मेरी बीवी पर फर्ज नहीं हुआ, जब दोनों पर फर्ज हो जाएगा तब दोनों साथ जाएंगे। अगर शौहर पर फर्ज हो गया तो शौहर के ऊपर लाजिम है कि वो अकेला जाकर हज करके आ जाए, फिर अल्लाह ताला आता फरमा देंगे बीवी के साथ फिर चले जाना। औरत के लिए तो आजी है, उसके लिए तो महरम होना साथ लाजमी है, लेकिन मर्द के लिए कोई वो नहीं। अगर रास्ता पूरा अमन है, उसके पास पैसा है, इतना है कि रास्ते का दादेरा भी मौजूद है, रास्ते का दादेरा भी मौजूद है और इतना मौजूद है कि घर पे देकर जा सकता है, घर वाले मांग करके ना खाए, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। तो वहां जाकर के सबसे पहला अपनी नजर की हिफाजत करें, वरना लोग ज्यादा ने फरमाया कि हज कर लिया, सारा नूर दिल के अंदर भरा हुआ है, मुल्तजम पर रोया, मकाम इब्राहिम के ऊपर रोया, हजर अस्वद के ऊपर रोया और क्या नाम है सफा मरवा पर जाकर के रोया, मदीने के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे अफर के ऊपर रोया, और फरमाया जैसे ही जहाज के अंदर बैठा फरमाया एक गिलास पानी के लिए उसने अपना सारा हज जाया कर दिया। अब एयरहोस्टेस को बुला करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है एक गिलास पानी दे लो। फरमाया जितना हज का नूर था सारा नूर एक लम्हे के अंदर निकल गया, एक लम्हे में खाली हो गया। हजरत वाला रसोई रहमतुल्लाह अलैह और दादा एक दफा जा रहे थे जद्दे से मक्का उमरे के लिए, कुछ देर के बाद हजरत ने फरमाया हजरत वाला रसोई रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई गाड़ी ठंडी नहीं हो रही, गाड़ी में एयर कंडीशन तो चल रहा है ठंडी नहीं हो रही। तो दादा ने फरमाया कि मैंने देखा तो मेरी तरफ का शीशा खुला हुआ, तो फरमाया मैंने जल्दी से शीशा ऊपर कर लिया तो कुछ देर में गाड़ी ठंडी हो गई। तो हजरत ने फरमाया कि अजीब अख्तर अब समझ में आया कि जब इंसान गुनाहों से बचता है और तकवा से रहता है तो फिर क्या है इंसान का दिल ठंडा रहता है, और फरमाया गुनाह भी करता रहे और इबादत भी करता रहे तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे गाड़ी में कंडीशन चलाकर शीशे खोल दिए, अब इंतजार कर रहा है, अब दुआ कर रहा है अल्लाह गाड़ी ठंडी हो जाए, अल्लाह गाड़ी ठंडी हो जाए, तो तेरी दुआ से गाड़ी ठंडी नहीं होगी, शीशा बंद करते बस, बस शीशा बंद करते दुआ की क्या जरूरत है। तो दोस्तों जो हम इबादत करते हैं उसके बाद जो मसाइब और मुश्किल आती है, हम अपनी जिंदगी में गौर करें क्या हमने गुनाहों का शीशा बंद किया, फिर वहीं पर हजरत ने एक और मिसाल समझाई। वहाँ एक ट्रक आकर के खड़ा हुआ जिसके अंदर टैंकर जिसके अंदर 10-20 हजार लीटर पेट्रोल होता है, वो आया और उसने 50-60 रियाल जितने का भी था पेट्रोल डलवाया और चला गया। दादा ने फरमाया कि मक्कर ये देखा आपने ट्रक आया और कितने का पेट्रोल डलवा करके गया? अगर जितने जब भी उसकी औकात थी उसने का डलवाया, फरमाया इसकी पीठ पर कितना पेट्रोल था? हजरत हजारों गैलन पेट्रोल था। फरमाया वो काम आया इसके? फरमाया नहीं। फरमाया इसी तरीके से मालूमात होना अलग चीज है, मालूमात इल्म है। फरमाया उसकी पीठ के ऊपर इतना इल्म था कि उससे हजारों जहाज चल सकते थे, लेकिन फरमाया उसके इंजन के अंदर पेट्रोल नहीं था। तो फरमाया जब तक तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो कितना भी इल्म तुम्हारे ऊपर लगाओ वो तुम्हारे लिए फायदा मंद नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लो, थोड़ा सा भी तुम्हारे वो अंदर इल्म होगा तो वो तुम्हें फायदा देगा। अगर पूरी पीठ तुम्हारी इल्म से भर दी जाए, सारी किताबें तुम्हें जबानी याद हो जाए और तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो फरमाया कुछ भी नहीं फायदा होगा। तो फरमाया एक नजर के अंदर कितने लाख रुपए इंसान खर्च करके गया, वो लाखों रुपए एक नजर के अंदर बराबर कर दिए। फिर यहां से जानते वक्त क्या नियत करके जाते हैं? यार जाऊंगा हज करने के लिए तो अपनी बहनों के लिए भी कुछ सामान लाना होगा, भाइयों के लिए भी कुछ लाना होगा, फिर उनके बच्चों के लिए भी कुछ लाना होगा, फिर माँ बाप के लिए भी कुछ लाना होगा, फिर खरीदारी कहां से करूंगा? अल्लाह के बंदे की इबादत के लिए भी जा रहा है। अल्लाह ताला किस लिए भेज रहे हैं? इबादत के लिए भेज रहे हैं, खरीदारी करने के लिए नहीं भेज रहे। अगर खरीदारी करनी है तो मुल्तजम पर हाथ उठाकर ये दुआ कर ले, अल्लाह मेरे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया। तो क्या होगा? दुनिया में जो चीज ला करके दोगे वो तो पहले ये खत्म फला, कितने दिन रहेगी? साल दो साल फला, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाएगा इंतकाल के बाद अल्लाह ताला उनके सामने पेश करेंगे कि आपकी औलाद हज करने के लिए गई थी, वहां उसने ये दुआ की थी, लिहाजा आज उस दुआ की बरकत से आपको जन्नत के अंदर भेजता हूँ। तब माँ बाप कितने खुश होंगे? सामने तो नहीं होगा, औलाद सामने तो नहीं होगी, लेकिन माँ बाप खुश कितने होंगे कि इस औलाद ने हमें इत्तला नहीं दी लेकिन वहां जाकर के हमें याद रखा अपनी दुआओं के अंदर, हमें याद रखा अपनी दुआओं के अंदर। तो माँ बाप बहन भाई अगर अल्लाह ताला तौफीक दे वहां से लाने की चीज खजूर और दमदम है और क्या चीज है? ये चीज ले आए जो चीज भाई पाकिस्तान में क्या कौन सी चीज ऐसी नहीं मिलती? अब तो खजूर भी यहाँ मिल रही है, मदीना मुनव्वरा की खजूर यहाँ मिल रही है, लेकिन वो जरा खरीद होती है खुद लाने के अंदर बरकत है। सिर्फ खजूर दिया है और दमदम दिया है, खरीदारी कर रहा है, तिजारत कर रहा है, ये चीज खरीद लू वो चीज खरीद लू तो इबादत की लज्जत उससे छिन जाती है, तो इबादत के अंदर मजा नहीं आएगा। मस्जिद नबी के अंदर खड़ा होगा लेकिन दिल उसका बाजार के अंदर फंसा होगा कि नमाज खत्म हो तो मैं बाजार के अंदर दाखिल हूँ जाकर के कुछ खरीद लू, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो वो भी खरीद लो, खरीदारी करने नहीं गया तो हज करने गया। फिर वहां लोग क्या करते हैं खास तौर पर हजर असरत के लिए कि किसी तरीके से मैं इसको बोसा दे दू। तो दोस्तों ये अब वो जमाना नहीं है कि जब हजर असरत खाली हुआ करता था, अब तो लोगों के दम घुट जाते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक के जमाने में तो औरतें घुस जाती है, न ये देखती है कि मर्दों से हमारा जिस्म टच हो रहा है या नहीं। टच होना तो दूर की बात है, ये भी पता नहीं चलता मर्द कौन है और औरत कौन है, घुस जाते हैं उसके अंदर। हजरत वाला ने फरमाया हराम है भाई, किसी मुसलमान को अजियत देना हराम है या नहीं है, लेकिन हजर असलम को गुस्सा देना फर्ज है, वाजिब है भाई। उन्होंने पट्टी बना दी बस वहां से इस्तेलाम कर लिया फुखा ने, इसीलिए तो इस्तेलाम का मसला निकाला है कि अगर वहां तक नहीं पहुंच सकता तो इस्तेलाम कर ले। लेकिन लोग अपने सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत अपनी तबीयत के मौसम चाहते हैं कि हम मोहब्बत कर लें, और जो हजर असमत को गुस्सा देकर के आ जाता है वो समझता हूँ मैंने तो क्या कारनामा अंजाम दिया है। तालीम ये सोच कि तेरी वजह से कितने मुसलमानों को चोटें लगी हैं, कितने मुसलमानों को तूने धक्का दिया है, किसी की गोली मार रहा है, किसी को मुक्का मार रहा है कि बस किसी तरीके से हजर असमत तक पहुंच जाओ। यही हाल मुसलम के ऊपर होता है, धक्के दे रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम पहुंच जाए। अरे जो अल्लाह ताला, जो अल्लाह मुंतजम पर दुआ कबूल कर सकता है वो पीछे खड़े होकर दुआ कबूल नहीं कर सकता। बोलो भाई अल्लाह ताला हर जगह हाजिर है नहीं है। फिर दूसरों को तकलीफ दे करके, अजियत पहुंचा करके, अल्लाह की मखलूक को अजियत पहुंचा करके ये सोचेगा कि मेरा हज कबूल हो गया, तो हज कबूल नहीं हुआ। हमारे साथ एक साथी थे हज के अंदर, तो जब आग लग गई तो खेमे जल गए थे, उस वक्त सारे खेमे जल गए, लोग अजीब तकलीफ के अंदर थे। जब हम अपने उसके अंदर आए तो वहां देखा कि जो हमारे जो दूसरे साथी थे वो खुला खुला होकर सो रहे थे, तो एक साथी हमारे साथियों में से थे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि थके हुए तो सबके सुबह से आग लगी शाम तक लगी रही थी, तो उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है, हमारे लिए सोने की जगह कहां पर है। तो हमारे उस्ताद देखे अल्लाह ताला जिसको हिम आता फरमाता है, उन्होंने फरमाया देखो मियां हज नामी इसी चीज का है कि बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। तो उन्होंने हमारे उस्ताद ने अपना बिस्तर बिछाया था खेमे के बाहर, तो उनसे कहा कि आप यहां सो जाइए। तो मैंने कहा उस्ताद जी आप कहां सोएंगे, कहा बेटा मैं भी सो जाऊंगा। तो इतना यानी बुरी थकन से बुरी हालत थी कि मैं खुद गिरा, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ। जब मुझे थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद आँख खुली तो मैंने देखा कि वो साहब कहाँ सो रहे हैं। मैंने सोचा उस्ताजी को देखूं कहाँ सो रहे हैं, तो जहाँ बैतुल खला बने हुए थे लोगों के उसके सामने वो बिस्तर डालकर सो रहे। तो मैंने उठाया, मैंने कहा उस्ताजी आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, तो उस पर कहा कि कुछ भी नहीं है जाओ जाकर के सो जाओ, तुम्हें जहां सुलाया जाओ वहां सो जाओ। फिर बाद में फरमाया कि बेटा हज इसी का नाम है, हज इसी तकलीफ को बर्दाश्त करने का नाम है कि तकलीफ आए और इंसान बर्दाश्त कर ले, इसी का नाम हज है। किसी से झगड़ा ना करे कि भाई तूने ज्यादा क्यों खा लिया, अरे उसने ज्यादा खा लिया थोड़ा सा कम खा ले, बर्दाश्त कर ले थोड़ा सा, तूने यूं क्यों कर लिया, तूने यूं क्यों कर लिया। अल्लाह ताला ने हमें ठेकेदार बना के थोड़ी भेजा है। और एक मसला और बता देता हूँ, रमी का मसला, शैतान को कंकरी मारने का, कि बाज लोग क्या कहते हैं हमें अफजल वक्त में कंकरी मारनी है। अफजल वक्त क्या है कि जिस वक्त मुस्तफा से आए सूरज गुरूब होने से पहले तक अफजल वक्त है, उसके बाद मकरूह वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल के वक्त में हजरत हरदोई का फतवा यह था कि आजकल के वक्त में मकरूह वक्त के अंदर मारना अफजल है, क्योंकि उस वक्त लोगों का इज्तिहाम इतना ज्यादा होता है, मजमा इतना ज्यादा होता है कि लोग कुचल के जो मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं कि जिद के अंदर घुस जाते हैं। कह रहे अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुव्वत की है, अभी तो हम जवान है, कोई कूड़े थोड़े हुए, लेकिन जब एक रेला आता है तो फिर इंसान के पांव उड़ जाता है जमीन से, फिर इंसान सोचता है या अल्लाह मैं आसमान और जमीन के बीच में लटक कहां गया। लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। हमारे एक रिश्तेदार आए थे, मैंने उनसे कहा आप बूढ़े थे, मैंने कहा कि देखिए हजरत वाला का फतवा है कि इस वक्त मगरिब के बाद भी जो कंकरी मारेगा, क्योंकि जान बचाना क्या है फर्ज है और ये मकरू वक्त है, तो हमारे जो फर्ज और मकरू का अगर मुकाबला हो तो अवलियत किसको होगी, फर्ज को होगी। तो वरना जान बचाना फर्ज है, जान बचाओ, जिस वक्त खाली मिल जाए उसमें जाकर कंकरी मारा। उन्होंने कहा कि अरे हम देहाती लोग हैं, हमें क्या है, हम तो मारेंगे, 2 दिन मार ली जैसे तैसे, 3रे दिन मालूम हुआ कि उनको बुखार चढ़ गया, बीमार हो गए, और 3रे दिन कंकरी मारी नहीं। अब आकर मसला मालूम कर रहे हैं कि मैंने 3रे दिन कंकरी मारी नहीं, मारी नहीं, अब मसला क्या है। तो हमारे उस्ताद ने मसला बताया कि आपके ऊपर दम लाजिम हो चुका है, आपके ऊपर दम लाजिम हो चुका है, वहां का एक दम ऐसा है कि इंसान का दम निकल जाता है, क्योंकि 400-500 रियाल का एक बकरा आता है, तो 500 रियाल में इंसान जब 500 रियाल निकालता है तो इंसान का दम निकल जाता है। तब उनको समझाया कि आपको पहले समझाया गया था, उन्होंने कहा अफसोस मैं पहले बात मान लेता, मैं पहले बात मान लेता। शरीयत ने तो आसानी रखी है, शरीयत युरीदुल्लाहु बिकुम अल-युस्र वला युरीदु बिकुम अल-उस्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे साथ आसानी का मामला किया है, वला युरीदु बिकुम अल-उस्र, अल्लाह ताला तंगी का मामला नहीं करते। इंसान खुद अपनी जान को हलाकत में डालता है कि नहीं मुझे तो अफजल वक्त के अंदर ही करनी, और फिर कंकड़ी मारने के अंदर अल्लाह अकबर सात कंकड़ी। दुनिया तो गुनाह करते वक्त हया ना आई, जब वहां कंकड़ी मारने का वक्त आया तो सात की जगह 10 कंकड़ी मार रहे, 14 कंकड़ी मार रहे। अरे अल्लाह ताला ने जो फर्ज फरमाया है 7 कंकड़ियां, तो 7 कंकड़ी मारो, उससे ज्यादा मारने में क्या फायदा। किसी को मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, हमारे पाकिस्तान के लोग कोई चप्पल मार रहा है, कोई बड़ा पत्थर उठा करके मार रहा है, उससे क्या होगा, शैतान को गालियां देते हैं। एक क्या फरमाए गालियां देते हैं तो शैतान क्या कहता है, बेटा निकल यहां से अभी बोलता था, फिर ऐसा घिरता है गुनाहों के अंदर, फिर ऐसा घिरता है कि फिर सोचा होता है कि अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ किस तरीके से। जब 7 कंकड़ी शरीयत ने लिखी है कि आराम आराम से 7 कंकड़ी मार दो तो उसको अजियत पहुंचेगी, तो 7 कंकड़ी मार ले, बजाय इसके कि जूता उतार कर और उसको जोश में आ गया, चप्पल उठाई और धड़ल उसको मार दी। अब चप्पल मार दी, अब गर्मी मक्के की गर्मी, अब वहां नंगे पैर चल रहा, अब फिर अफसोस कर रहा होता है, यार मैंने चप्पल मारी क्यों, काश अब किसी की चप्पल मिल जाए तो मैं पहन लूं, गर्मी इतनी है कि पांव में छाले पड़ जाए। तो हज के अयाम है, जो हज पर जा रहा है तो ये बयान उस तक पहुंचा दे, ये बयान उस तक पहुंचा दे, या तो इसकी कैसेट उस तक पहुंचा दे, वरना हज के मसाइल मालूम करके जाए। बाद लोग यहां से गए, जाते वक्त वहां पर मालकी है दादा, सऊदी अरब के अंदर मालकी है। अब यहां से लोग दादान गए, कोई मसले का आइन नहीं। अब उन्होंने देखा कि वहां पर लोग आमीन कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आमीन। अब आप क्या तो आमीन नहीं है इतनी जोर से, आमीन की 3 किस्में, आमीन बिसर, आमीन बिजर और आमीन बिशर, 3 किस्में है आमीन की। आमीन बिसर यानी आनाब क्या क्या है आहिस्ता से कह दो, लेकिन हमारे यहाँ क्या इसमें रिवाज है कि कहते ही नहीं, या कहते हैं तो आनाब का मतलब ये है कि कम से कम इतनी जोर से आमीन कहे कि खुद अपने कानों से सुन ले उसको, खुद तक आवाज आ जाए। और एक आमीन बिल जार है कि तुम्हारे दाएं बाएं जो लोग खड़े रहे उन तक आमीन की आवाज पहुंच जाए। और हमारे बाजे जाहिल ऐसे हैं जो इतने जोर से आमीन कहते हैं कि अकेले खड़े पूरी मस्जिद सुन ले, ये आमीन बिशर है, ये आमीन बिल जार नहीं है, ये आमीन बिशर है। आमीन बिल जार ये थी कि तुम्हारे दाएं बाएं जो खड़े हैं वो सुन ले। तो अब मसला मालूम नहीं है तो उनके साथ जाकर के शुरू हो गए, आमीन जोर से कहना शुरू कर दिया। अरे भाई किस लिए, अरे यहाँ सब लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। अरे उनका वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मसलक पर अमल कर रहे हैं। एक किश्ती के अंदर चलने वाला कामयाब होता है, 2 किश्ती में चलने वाला कामयाब नहीं होता। उनके यहाँ क्या है, औरत अगर आगे आ जाए नमाज के लिए तो उनके यहाँ नमाज हो जाती है, लेकिन अनाब के अगर औरत आगे हो जाए तो अनाब के नमाज नहीं होती, लोग खड़े हो जाते हैं, औरतों के बीच में खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर किस लिए भाई, नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए, नमाज नहीं होगी। ये छोटे छोटे मसाइल ऐसे हैं जो वहां जाकर पेश आते हैं और इंसान इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, गौर भी नहीं करता कि यार मेरा हक क्या होगा, मेरी नमाज क्या होगी। 1 लाख नमाज का सवाब इसने जाया कर दिया। अगर मक्कतुल मुकर्रमा में अमूमन ये होता, 1 लाख रकात नमाज का सवाब इसका जाया हो गया, खत्म। लिहाजा ऐसी जगह तलाश करें जहां औरतें आगे ना हो, मर्दों के बीच के अंदर जाकर करें। और जब तवाफ करें तो दादा ने फरमाया कि बैतुल्लाह की तरफ मत देखो। क्यों? फरमाया जब बादशाह से बातें करते हो, हम कलाम होते हो, तो अदब के खिलाफ है कि बादशाह की नजरों से नजरें मिला करके कलाम करो। फरमाया वहां नजर झुका करके बात करते हो, तो फरमाया अल्लाह ताला के घर का तवाफ करना और उसमें दुआ मांगना गोया तुम अल्लाह ताला से हम कलाम हो, और बैतुल्लाह की तरफ देखना ऐसा है गोया कि अल्लाह की आंखों में नाखें लाल करके देखा। लिहाजा उस वक्त क्या है, निगाह नीचे रखे, निगाह नीचे रख करके तवाफ करता रहे और ना महरमों की चक्कर से भी बचे, औरतों की चक्कर से भी बचे, वरना क्या होगा, तवाफ कर रहा होगा और दिल के अंदर वही ख्याल पकड़े होंगे, वही गंदे ख्याल होंगे। कितनी पाकीजा जगह जहां अंबिया ने हज किया, अंबिया ने तवाफ किया, ये सब उसी जगह बैठकर हरामकारी के मंसूबे बना रहे। तो अल्लाह ताला हमारे जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हज की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला उनको हज मकबूल अता फरमाए, और जिनको अल्लाह ताला ने इस्तेआत नहीं है, अल्लाह ताला उनको इस्तेआत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, तक्वा वाली हयात नसीब फरमाए, और औलिया सिद्दीकीन की खत मुंतहा तक पहुंचा दे। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। ये खातून ने लिखा अल्लाह ताला उनको शायद अता फरमाए जो भी बीमारी हो दूर हो जाए। एक साल ने लिखा है रोजी में खुशाची और औलाद नबीना अल्लाह ताला अता फरमाए। एक साल ने लिखा है मेरे वालिद साहब की रोजी में अल्लाह ताला दुआ रोजी में बरकत अता फरमाए और मेरे शोहर को अल्लाह ताला नेक बना दे। तो इतने बड़े बड़े बच्चे जो पढ़ने का वक्त नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वारजुकना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वारजुकना इज्तिनाबहु। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا خائبين، يا الله ماري أمة المسلمة كمان بناؤكم عفرما، يا الله ماري أمة المسلمة سات رحم وكرم، فضل عناية وعافية كمان لا فرما، يا الله نسبت امت مسلمہ کی مشکلات کے اندر ہے، یا اللہ امت مسلمہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ان تمام مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ تمام جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا، تو یا اللہ وہ ہم سے امید رکھتے ہیں دعاؤں کی، یا اللہ ہم سب کی جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظار فرما، یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کے رزق کے اندر خوشحالی پیدا فرما، یا اللہ میرے دادا کو، میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو، حضرت میر صاحب کو، اور یہاں جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں ان کے والدین کو اور ان کے عائزہ اقربا جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ حق مقبول عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس ملک میں جو بدامنی ہے اس کو امن سے تبدیل فرما، یا اللہ جو لوگ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو ان کے ارادوں سے اندر ناکام فرما، یا اللہ تو ان کو ان کے ارادوں سے اندر ناکام فرما، اور یا اللہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، یا اللہ تو ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کے آئندہ آنے والی نسلیں بھی یا اللہ اس بات سے عزت پکڑے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، ان سے محبت کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت عطا فرما، یا اللہ صحابہ کے عمل کی توفیق، صحابہ نے جو سنتوں کی سنتیں جو سنتوں پر عمل کیا، یا اللہ ان سنتوں کی محبت کی ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان علیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔